नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातियों बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शीर्ष 48 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दे दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे से 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।